आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनकी कहानियां अक्सर हकीकत और सपने की धुंधलकी में घटती हैं। हरुकी मुराकामी।
हाँ, मुराकामी बिल्कुल एक ऐसा नाम जो आज मतलब दुनिया भर के साहित्य प्रेमियों के लिए जाना पहचाना है। 1949 में क्योटो में जन्मे थे और आज आप देखें तो समकालीन कथा साहित्य की शायद सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक हैं।
और उनकी खासियत क्या है, मतलब जो आपने कहा हकीकत और सपना?
हाँ, उनकी खासियत है वो जापानी संस्कृति की जो गहरी शांति है ना, और पश्चिमी पॉप कल्चर, खासकर जैज संगीत और अमेरिकी साहित्य की गूंज, इन दोनों को वो एक साथ ले आते हैं।
अच्छा,
बड़े अनोखे ढंग से।
तो आज हमारा इरादा यही है कि हरुकी मुराकामी के लेखन की परतों को थोड़ा खोलें,
बिल्कुल
समझें कि वो क्या चीज है जो उनके उपन्यासों को इतना खास बनाती है, कैसे उनका अपना जीवन उनके लेखन में झलकता है,
सही।
और क्यों दुनिया भर के पाठक उनकी कहानियों से, उनके किरदारों से इतना जुड़ पाते हैं।
तो फिर शुरू करते हैं उस माहौल से जहां मुराकामी पले बढ़े। देखिए, उनका जन्म हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद वाले जापान में।
अच्छा।
एक ऐसा देश जो आप सोचिए अमेरिकी कब्जे के साये में था और अपनी पहचान को दोबारा गढ़ने की कोशिश कर रहा था।
ये तो बड़ा उथल पुथल का समय रहा होगा।
बिल्कुल, सोचिए, एक तरफ तो सदियों पुरानी जापानी परंपराएं थीं, शिंतो मंदिर, परिवार के मूल्य,
हाँ,
और दूसरी तरफ अमेरिकी फौजी अड्डे थे, रेडियो पर जायज बज रहा था, हॉलीवुड की फिल्में आ रही थीं।
रेमंड चैंडलर के उपन्यास।
हाँ, वही जासूसी उपन्यास। तो ये एक जबरदस्त मतलब सांस्कृतिक घालमेल का दौर था।
और जब उन्होंने लिखना शुरू किया 70 के दशक के अंत में,
हाँ, लेट 1970s में,
तब जापान आर्थिक रूप से तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था,
हाँ, इकोनॉमिक मिरेकल चल रहा था,
पर शायद एक रूहानी खालीपन भी था समाज में, एक बेचैनी सी।
बिल्कुल सही कहा आपने। रफ्तार तो बहुत तेज थी पर शायद दिशा उतनी साफ नहीं थी।
और उस समय का जो एक स्थापित जापानी साहित्यिक जगत था,
जिसे बुंदन कहते हैं,
हाँ बुंदन, जिसमें यसुनारी कावाबाता और युकियो मिशिमा जैसे बड़े बड़े लेखक थे,
दिग्गज थे वो तो।
बिल्कुल, और वो ज्यादातर पारंपरिक जापानी विषयों और स्टाइल पर ही लिख रहे थे। मुराकामी ने जानबूझकर, मतलब कॉन्शियसली, खुद को उससे अलग रखा।
अच्छा,
उन्होंने वो जो आई नॉवल की परंपरा थी ना जापान में,
हाँ, आत्म केंद्रित उपन्यास,
हाँ, वो आत्मविश्लेषण वाले उपन्यास, उसको उन्होंने नहीं अपनाया।
तो फिर प्रेरणा कहाँ से मिली उन्हें अगर जापानी ट्रेडिशन से नहीं तो?
उन्होंने पश्चिम की तरफ देखा,
अमेरिका की तरफ,
लेखक जैसे रेमंड चैंडलर, कर्ट वोनिगेट,
फिट्ज़जेराल्ड,
हाँ, स्कॉट फिट्ज़जेराल्ड, ये सब उनके पसंदीदा थे, और जैज संगीत।
जाज का तो बहुत जिक्र आता है उनकी किताबों में। हाँ बिल्कुल, जैज की वो जो इम्प्रोवाइजेशन वाली आज़ादी है, उसकी लय, फिर अमेरिकी पॉप कल्चर की एनर्जी, ये सब चीज़ें उनके लिखने में उतर आईं, और ये उस समय के जापानी साहित्य के लिए बिल्कुल नई बात थी।
क्या वो अकेले थे जो ऐसा कुछ कर रहे थे, या और भी लोग थे?
नहीं, कुछ और लेखक भी थे, जैसे रियो मुराकामी, नाम एक जैसा है पर वो अलग लेखक हैं,
हाँ,
और बनाना योशीमोतो, ये लोग भी आधुनिक शहरी जापान की जो बदलती सच्चाइयां थीं, अकेलापन, भटकाव, उस पर लिख रहे थे। लेकिन हारुकी मुराकामी का जो कॉम्बिनेशन था ना, अमेरिकी पॉप कल्चर के रेफरेंसेस, रोजमर्रा की जापानी जिंदगी का एहसास, और फिर एकदम से वो अति यथार्थवाद, मतलब सरियल एलिमेंट,
हाँ, वो जादू वाला पुट,
हाँ, वो बिल्कुल अनोखा था, और मेरे ख्याल से इसी ने उन्हें बाद में वो इंटरनेशनल पहचान दिलाई।
और ये भी तो है कि बाद में जापान में जो बड़ी घटनाएं हुई,
हाँ बिल्कुल, जैसे 90 के दशक में वो आर्थिक मंदी आई,
और फिर 1995 का वो कोबे भूकंप बड़ा भयानक था,
बहुत, और उसी साल टोक्यो सबवे पर वो सरीन गैस का हमला हुआ।
हाँ,
इन सब त्रासदियों ने, इन घटनाओं ने भी उनके लेखन पर असर डाला। उन्हें इतिहास, मतलब नेशनल ट्रॉमा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर और गहराई से सोचने पर मजबूर किया।
अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो बचपन कोबे शहर में बीता,
हाँ,
और ये बात बड़ी मजेदार लगती है कि माता पिता दोनों जापानी साहित्य पढ़ाते थे,
हाँ, दोनों टीचर्स थे लिटरेचर के,
पर बेटे को दिलचस्पी थी दोस्तोयेवस्की और काफ्का में, और वो सस्ती अमेरिकी पेपरबैक किताबों में,
है ना, कमाल की बात। और शायद यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट उनकी क्रिएटिविटी का सोर्स बना। एक तरफ जापानी घर की वो शांत जानी पहचानी दुनिया, और दूसरी तरफ पश्चिमी कल्चर की वो अनजान रोमांचक सी हलचल। उन्होंने पढ़ाई की टोक्यो की वासेडा यूनिवर्सिटी से, ड्रामा पढ़ा,
डिग्री थिएटर में ली,
हाँ, लेकिन वो खुद मजाक में कहते हैं कि उनकी असली पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी क्लासरूम में नहीं हुई।
कहाँ हुई फिर?
वो कहते हैं शिंजुको के जैज क्लबों में हुई।
अच्छा।
या पुरानी फिल्मों के अंधेरे हॉल में और सेकेंड हैंड रिकॉर्ड की दुकानों में।
क्या बात है। और वहीं यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात योको से हुई, जिनसे उन्होंने शादी की।
हाँ, योको से।
और फिर दोनों ने मिलकर एक बड़ा ही अनोखा काम किया, एक जैज कॉफी हाउस और बार खोला, पीटर कैट।
हाँ, ये भी उनकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। 7 साल तक चलाया उन्होंने वो बार।
7 साल?
सोचिए, दिन में कॉफी, रात में कॉकटेल और हमेशा जैज।
वाओ।
और उनके राइटर बनने की कहानी, तो वो तो अपने आप में किसी मुराकामी नॉवेल का सीन लगता है।
हाँ, वो बेसबॉल मैच वाली।
हाँ, अप्रैल 1978 की बात है, वो टोक्यो के जिंगू स्टेडियम में बैठे थे। याकुल स्वेलोज और हिरोशिमा कार्प का मैच चल रहा था। जैसे ही एक अमेरिकी बल्लेबाज डेव हिल्टन, उसने एक डबल मारा, बल्ले और गेंद के टकराने की आवाज सुनते ही एकदम से जैसे कोई बिजली कौंधी हो, उन्हें लगा मैं एक उपन्यास लिख सकता हूँ।
कमाल है, मतलब बस एक पल और जिंदगी का रास्ता बदल गया।
बिल्कुल, उसी रात घर गए, किचन टेबल पर बैठे और अपना पहला उपन्यास लिखना शुरू कर दिया, हेयर द विंड सिंग,
1989 में।
हाँ, और कमाल ये कि इस पहले ही उपन्यास ने जापान का बड़ा प्रतिष्ठित गुंजो प्राइज जीत लिया नए लेखकों के लिए।
वाह, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
हाँ, ये तो आगाज था। असली धमाका तो हुआ 1987 में, जब नॉर्वेजियन वुड आई।
हाँ, नॉर्वेजियन वुड, उसने तो जापान में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे ना।
अरे बिल्कुल, वो एक फिनोमेनन बन गया जापान में, वो रातों रात सुपरस्टार बन गए।
मैंने सुना है वो इस शोहरत से बहुत असहज हो गए थे, परेशान हो गए थे।
हाँ बिल्कुल, वो इतने फेमस हो गए कि सड़कों पर लोग उन्हें पहचानने लगे, और उनका स्वभाव थोड़ा शांत निजी किस्म का है। तो इसी प्रसिद्धि से बचने के लिए वो कुछ सालों के लिए जापान छोड़कर चले गए।
कहाँ गए?
पहले यूरोप गए, ग्रीस में रहे, इटली में रहे, फिर अमेरिका चले गए, वहां प्रिंसटन और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी।
अच्छा,
तो इस दूरी ने, मतलब ये जो एक तरह का सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल था, इसने शायद उन्हें जापान को, अपनी संस्कृति को एक बाहर वाले की नजर से देखने का मौका दिया,
जिसने उनके लेखन को और ग्लोबल बनाया होगा।
हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है।
और उनके जीवन का एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है उनका दौड़ना, लंबी दूरी की दौड़।
हाँ हाँ, वो मैराथन धावक हैं, बहुत अनुशासित, रोज दौड़ते हैं।
इस पर तो उन्होंने पूरी किताब भी लिखी है।
बिल्कुल, व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, 2007 में आई थी। और ये दौड़ना उनके लिए सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ऐसा लगता है ये उनके लिखने की प्रक्रिया का, उनके वो अकेले रहने वाले एकाग्र स्वभाव का ही एक हिस्सा है।
तो अब आते हैं उनके लेखन के दिल पर, उनके मुख्य विचार, उनकी शैली, मतलब साहित्य के दुनिया को मुराकामी ने क्या खास दिया है।
मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा योगदान है उनका, वो है लिखने का एक ऐसा स्टाइल बनाना जो है तो जापानी जड़ों से जुलावा, लेकिन जिसकी अपील पूरी दुनिया में है, एकदम ग्लोबल। उनकी भाषा देखिए, अक्सर बहुत सीधी सरल सी लगती है।
हाँ, बहुत अनफ्लोरी।
हाँ, सधी हुई। इस पर वो जो अमेरिकी हार्ड बॉयल्ड डिटेक्टिव नॉवेल्स थी ना,
जिनका उन्होंने अनुवाद भी किया है।
हाँ, उनका असर साफ दिखता है। लेकिन इसी रोजमर्रा की आम सी लगने वाली भाषा के बीच में वो बड़ी आसानी से अति यथार्थ को ले आते हैं, सररियल चीजों को।
अति यथार्थवाद मतलब ऐसी घटनाएं जो लॉजिक से परे हों, सपनों जैसी।
बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन, ऐसे किरदार जो अजीब हैं, जादुई हैं, लेकिन कहानी में वो ऐसे घुल मिल जाते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
जैसे?
जैसे एक पल उनका किरदार स्पगेटी बना रहा है या जैज सुन रहा है।
हाँ,
अगले ही पल वो किसी अजीब से कुएं में उतर रहा है या किसी ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां 2 चांद दिख रहे हैं।
या बिल्लियां बातें कर रही हैं।
तो ये जो यथार्थ और अयथार्थ का मिक्सचर है, यही उनकी पहचान है।
उनके किरदार भी तो अक्सर बड़े आम से लोग होते हैं, है ना? मतलब कोई हीरो या बहुत असाधारण लोग नहीं।
हाँ बिल्कुल, अक्सर वो मध्यम वर्गीय शहरी लोग हैं, थोड़े खोए खोए से, अकेले, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे फंसे हुए से। और यही आम लोग अचानक किसी अजीब घटना से या किसी रहस्यमयी फोन कॉल से या कोई बिल्ली गायब हो गई,
हाँ,
या कोई सपना आया, और उसके जरिए वो एक असाधारण सफर पर निकल पड़ते हैं।
उनके लेखन में कुछ थीम्स बार बार आती हैं।
हाँ बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जो लौट लौट कर आती हैं, जैसे मॉडर्न शहरी जिंदगी का अकेलापन,
आइसोलेशन,
हाँ, खोया हुआ प्यार या कोई खोया हुआ साथी, अपनी पहचान की तलाश, यादों की ताकत और उनका बोझ भी।
हाँ, यादें जो सुकून भी देती हैं और तोड़ती भी हैं।
सही कहा। और कैसे इतिहास, खासकर वो इतिहास जिसे दबा दिया गया है, भुला दिया गया है, वो हमारे आज में घुसपैठ करता है। और उन्होंने कई सारे जॉनर्स को मिला दिया है। क्वेस्ट नैरेटिव है, मतलब खोज की कहानी,
साइंस फिक्शन के तत्व भी होते हैं।
हाँ, साइंस फिक्शन, नोआर, मिस्ट्री यानी जासूसी कहानी, लव स्टोरी, इन सबको मिलाकर उन्होंने अपनी एक कह सकते हैं खिचड़ी शैली बना ली है,
जिसे आप लोग मुराकामी एस्क कहते हैं।
बिल्कुल, मुराकामी एस्क।
और जिस तरह वो अपनी कहानियों में, जो सेट तो जापान में है पर उनमें वो बीटल्स का जिक्र करते हैं या ड्यूक एलिंगटन का या फिट्ज़कैरल का,
हाँ,
उससे कहानी का दायरा एकदम बढ़ जाता है। वो जैसे ग्लोबल कल्चर की भाषा में बात कर रहे होते हैं।
एकदम सही। और यही चीज उन्हें दुनिया भर के रीडर से जोड़ती है, चाहे कोई टोक्यो में पढ़ रहा हो या लंदन में या मुंबई में। अब अगर उनकी कुछ खास रचनाओं पर आएं।
हाँ बिल्कुल, कौन सी किताबें हैं जिन्होंने मुराकामी को वो बनाया जो वो आज हैं?
ये येलो विग सिंह से शुरुआत हुई, फिर पिनबॉल 1973 आई, लेकिन उनका पहला बड़ा उपन्यास जिसने उनकी वो खास अति यथार्थ वाली खोज वाली शैली को एस्टैब्लिश किया,
हाँ
वो था अ वाइल्ड शीप चेज, 1982 में आया था।
अच्छा,
इसमें एक आम सा नायक है जो एक बड़ी रहस्यमयी भेड़ की तलाश में निकल पड़ता है। इसमें डिटेक्टिव स्टोरी वाले एलिमेंट्स भी हैं और मुराकामी का वो सिग्नेचर, थोड़ा उदासीन सा, थोड़ा मजाकिया सा नायक भी है।
और फिर आई नॉर्वेजियन वुड 1987 में, जिसने उन्हें जापान में घर घर में पहुंचा दिया।
हाँ, और मजे की बात यह है कि नॉर्वेजियन वुड उनकी बाकी फेमस किताबों से काफी अलग है।
कैसे?
ये पूरी तरह से यथार्थवादी है, रियलिस्टिक नॉवल है। इसमें कोई जादू नहीं, कोई अति यथार्थ नहीं।
अच्छा,
ये 1960 के दशक के टोक्यो में सेट है।
हाँ,
कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच प्यार, दोस्ती, मानसिक उलझने, मौत, इसकी एक बहुत ही और इसकी जबरदस्त सफलता ने यह भी दिखाया कि मुराकामी बिना जादू के भी पाठकों के दिलों को गहराई तक छू सकते हैं।
लेकिन बहुत से क्रिटिक्स और रीडर्स द विंड अप बर्ड क्रॉनिकल को उनका सबसे महत्वपूर्ण काम मानते हैं ना?
हाँ, अक्सर इसे उनका मैग्नम ओपस कहा जाता है। 1994-95 में आया था ये।
काफी मोटा उपन्यास है ये।
हाँ, ये एक बड़ा जटिल, कई परतों वाला उपन्यास है। कहानी एक बहुत ही साधारण आदमी टोरू ओकाडा से शुरू होती है। उसकी बिल्ली गायब हो जाती है।
बिल्ली? हाँ, बिल्लियां बहुत आती हैं मुराकामी में।
हाँ, बिल्कुल, बिल्ली गायब होती है, फिर उसकी पत्नी भी गायब हो जाती है, और इनकी तलाश में वो ना सिर्फ बड़े अजीबोगरीब किरदारों से मिलता है, बल्कि जापान के उस इतिहास से उसका सामना होता है जिसे भुला दिया गया है, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मंचूरिया में जो अत्याचार हुए थे।
ओहो,
वो सब कहानी में बहुत अहम तरीके से आता है। तो ये उपन्यास घरेलू जिंदगी के छोटे छोटे डिटेल्स, इतिहास के बड़े सदमे, सपने और हकीकत, इन सबको कमाल की बुनावट में पेश करता है।
इसके बाद काफ्का ऑन द शो भी बहुत पॉपुलर हुई थी 2002 में।
बिल्कुल, उसमें दो कहानियां पैरेलल चलती हैं। एक 15 साल का लड़का है, काफ्का टामुरा, जो घर से भाग गया है एक भविष्यवाणी से बचने के लिए,
अच्छा,
और दूसरी कहानी एक बूढ़े आदमी नकाटा की है जो खोई हुई बिल्लियों को ढूंढ सकता है और उनसे बातें भी कर सकता है।
फिर से बिल्लियां।
हाँ, और ये दोनों कहानियां बड़े रहस्यमयी ढंग से आपस में जुड़ी हुई हैं। ये भाग्य, पहचान, मेटाफिजिक्स, मतलब तत्व मीमांसा के सवालों से जूझता है। बहुत ही पढ़ने लायक उपन्यास है।
और फिर 1Q84 का जिक्र तो करना ही होगा, वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था।
हाँ, 2009-10 में आया, 3 वॉल्यूम में, एक बहुत बड़ा एपिक नॉवल कह सकते हैं। ये एक डायस्टोपियन दुनिया में सेट है,
जहां दो चांद हैं आसमान में।
हाँ, जहां आसमान में दो चांद दिखते हैं। ये एक लव स्टोरी भी है, पर साथ ही ये धार्मिक कट्टरता, सरकारी निगरानी और असलियत क्या है, मतलब रियलिटी की नेचर क्या है, इन जैसे बड़े मुद्दों को भी छूती है।
अगर हम उनके समकालीन जापानी लेखकों से उनकी तुलना करें तो वो कहाँ फिट होते हैं?
देखिए, जैसा हमने पहले बात की, वो पारंपरिक बंधन लेखक जो थे, कावाबाता, मिशिमा, उनसे तो बिल्कुल अलग हैं।
हाँ,
उनके अपने दौर के लेखक थे, जैसे रियू मुराकामी या बनाना योशीमोटो, वो भी आधुनिक जापान की उलझनों पर, शहरी जिंदगी पर लिख रहे थे। लेकिन हारुकी मुराकामी का जो खास मिक्सचर है, अमेरिकी पॉप कल्चर के लिए वो लगाव, अति यथार्थ का इस्तेमाल, और वो एक खास किस्म की उदासी या अकेलापन जो बहुत जापानी भी लगता है और यूनिवर्सल भी,
हाँ,
वो उन्हें सबसे अलग खड़ा करता है। उनका फोकस जैसे बाहर की तरफ ज्यादा रहा, अमेरिकी लिटरेचर, म्यूजिक, फिल्में, और शायद इसी ने उन्हें वो ग्लोबल अपील दी।
तो ये जो ग्लोबल अपील है, ये कैसे बनी? क्या जापान में उन्हें शुरू से ही बहुत पसंद किया गया?
नहीं, ऐसा नहीं था। जापान में शुरुआत में जो लिटरेरी एस्टैब्लिशमेंट था, जो आलोचक थे, उन्होंने उन्हें शक की निगाह से देखा।
अच्छा, क्यों?
कई लोगों ने कहा कि ये बहुत ज्यादा अमेरिकी हैं या सतही हैं, ये असली साहित्य नहीं है, ऐसी बातें हुई।
ओहो,
लेकिन जो यंग जनरेशन थी, जो रीडर्स थे, उन्होंने उन्हें हाथों हाथ लिया, उन्हें मुराकामी के किरदारों में, उनकी भाषा में, उनकी दुनिया में अपना अक्स दिखा। फिर जब 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक में उनकी किताबों का ट्रांसलेशन होना शुरू हुआ अंग्रेजी में दूसरी यूरोपियन भाषाओं में, तब उनकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई।
आज तो वो शायद दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले जापानी लेखक हैं, इसमें कोई शक नहीं।
बिल्कुल, वो समकालीन जापानी फिक्शन का ग्लोबल चेहरा बन गए हैं और उनका असर भी बहुत गहरा पड़ा है
दूसरे लेखकों पर भी।
हाँ, उनकी शैली ने सिर्फ जापान में ही नहीं, जैसे योको ओगावा हैं, बल्कि पश्चिम में भी कई लेखकों को प्रभावित किया है। जैसे जोनाथन लेथम का नाम लिया जाता है, यहाँ तक कि नोबेल विजेता काजुए शिगुरो के काम में भी खासकर यादों और रियलिटी की अनिश्चितता को लेकर उनके प्रभाव की बात की जाती है।
तो उनकी विरासत क्या है, मतलब मुराकामी ने साहित्य को क्या दिया?
मेरे ख्याल से उनकी विरासत यह है कि उन्होंने अति यथार्थवाद को, सीरियलिज्म को, साइकोलॉजिकल यथार्थ को एक्सप्लोर करने का एक वैलिड और बहुत पावरफुल तरीका बना दिया, उसको नॉर्मलाइज कर दिया। और उनकी कहानियां आज भी उतनी ही रिलेवेंट लगती हैं क्योंकि वो आज के इंसान की उलझन को पकड़ती हैं। इस अजीब सी बिखरी हुई दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं गहरे कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, अर्थ ढूंढ रहे हैं और शायद थोड़े से जादू की तलाश में भी हैं।
और ये भी तो है कि नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम लगभग हर साल सुनाई देता है।
हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। नोबेल कमेटी उन्हें नजरअंदाज करती रही है, पर रीडर्स के बीच उनकी पॉपुलैरिटी और लिटरेरी स्टैचर तो निर्विवाद है।
उनके लेखन में ऐसी बहुत सी पंक्तियां हैं जो एकदम याद रह जाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं।
हाँ बिल्कुल, भाषा सीधी होती है पर बात बहुत गहरी कह जाते हैं। जैसे काफ्का ऑन द शोर की वो मशहूर लाइन है,
हाँ,
और जब तूफान थम जाएगा तुम्हें ठीक से याद भी नहीं रहेगा कि तुम उसमें से कैसे गुजरे, कैसे जिंदा बच निकले। तुम्हें तो ये भी पक्का पता नहीं होगा कि तूफान सचमुच थम भी गया है या नहीं, लेकिन एक बात तय है, जब तुम उस तूफान से बाहर निकलोगे तो तुम वो इंसान नहीं होगे जो उसमें घुसा था।
वाह, ये जिंदगी की बड़ी मुश्किलों से गुजरकर जो बदलाव आता है उसकी बात है।
बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है।
2009 में जब उन्हें यरूशलम प्राइज मिला था, तब उन्होंने एक भाषण दिया था जो काफी चर्चा में रहा।
हाँ, वो एक बहुत पावरफुल स्पीच थी, खासकर उस कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने कहा था, अगर कहीं एक ऊंची मजबूत दीवार है और एक अंडा है जो उस दीवार से टकराकर टूट जाता है, तो मैं हमेशा, चाहे दीवार कितनी भी सही हो और अंडा कितना भी गलत, अंडे के पक्ष में खड़ा रहूंगा।
ये सिस्टम के खिलाफ इंडिविजुअल के साथ खड़े होने की बात है।
हाँ, ये उनका एक तरह से मॉरल स्टैंड था जो उनके लेखन में भी दिखता है।
और वो दौड़ने वाली किताब से, व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, एक बहुत सीधी पर गहरी बात। दर्द तो होना ही है, तकलीफ झेलना या ना झेलना आपकी मर्जी है।
हाँ, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल।
बिल्कुल।
और यादों के बारे में, जो उनके लेखन का इतना सेंट्रल थीम है, द विंडरबर्ड क्रॉनिकल में एक लाइन है, यादें वो चीज हैं जो तुम्हें अंदर से गर्म रखती हैं, लेकिन वो तुम्हें टुकड़े टुकड़े भी कर सकती हैं।
कितनी सच्ची बात है, यादों की वो दोधारी तलवार।
बिल्कुल।
उनकी जिंदगी या काम से जुड़ी कोई और खास बात जो शायद कम लोग जानते हों, कुछ रोचक तथ्य?
वैसे हमने ज्यादातर बातों का जिक्र कर ही लिया है, जैसे वो माता पिता साहित्य के टीचर थे पर खुद की रुचि पश्चिम में थी।
हाँ,
7 साल तक वो जैज बार चलाया, वो बेसबॉल मैच वाला किस्सा तो है ही,
वो तो कमाल का है।
नॉर्वेजियन वोट के बाद शोहरत से बचने के लिए विदेश चले जाना, मैराथन दौड़ना, पुरस्कारों की बात करें तो जापान में गुंजो और तानिजाकी जैसे बड़े अवार्ड्स तो मिले ही। बाद में इंटरनेशनल लेवल पर भी कई बड़े सम्मान मिले। फ्रांच काफ्का प्राइज मिला 2006 में, यरूशलम प्राइज 2009 में, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन लिटरेचर अवार्ड 2016 में।
हाँ, ये दिखाता है कि दुनिया भर में उन्हें कितना सम्मान मिला है।
बिल्कुल।
अच्छा, उनकी किताबों पर फिल्में भी बनी हैं, अडैप्टेशंस, क्या वो कामयाब रही हैं? क्योंकि उनकी दुनिया को, वो सपनों जैसी अजीब सी दुनिया को पर्दे पर उतारना तो बहुत मुश्किल लगता है।
हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है और नतीजे मिले जुले ही रहे हैं। सच कहूँ तो एक शुरुआती फिल्म थी टोनी टकीतानी 2004।
हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में।
उसे काफी सराहा गया था क्योंकि उसने मुराकामी के उपन्यास की मूड को, उसके शांत एहसास को अच्छे से पकड़ा था। फिर नॉर्वेजियन वुड 2010 पर जो फिल्म बनी, वो दिखने में बहुत सुंदर थी, मतलब सिनेमेटोग्राफी वगैरह कमाल की थी, उस दौर का माहौल अच्छा बनाया था,
लेकिन
कई लोगों को लगा कि जो उपन्यास की इमोशनल डेप्थ थी वो उसमें पूरी तरह नहीं आ पाई, थोड़ी सपाट रह गई।
लेकिन हाल ही में जो आई थी ड्राइव माय कार 2021, वो तो बहुत कामयाब रही, उसे ऑस्कर भी मिला।
हाँ बिल्कुल, ड्राइव माय कार एक बेहतरीन उदाहरण है कि मुराकामी के काम को कैसे अडैप्ट किया जा सकता है। वो उनकी एक छोटी कहानी पर आधारित थी।
अच्छा, पूरी नॉवल पर नहीं?
नहीं, एक शॉर्ट स्टोरी पर। लेकिन डायरेक्टर रियुस्के हामागुची ने उसके जो थीम्स थे, दुख, कला, कम्युनिकेशन की जरूरत और मुश्किलें, उनको बहुत खूबसूरती से एक्सपैंड किया। उसने सिर्फ कहानी की नकल नहीं की, बल्कि उसकी आत्मा को सिनेमा की भाषा में ट्रांसलेट किया। एक और सफल फिल्म थी दक्षिण कोरिया की थ्रिलर बर्निंग 2018।
हाँ, वो भी मैंने देखी है, बहुत इंटेंस फिल्म थी।
हाँ, वो मुराकामी की कहानी बार्न बर्निंग पर आधारित थी। उसने कहानी के रहस्य और टेंशन को एक बहुत पावरफुल सोशल कमेंट्री में बदल दिया। तो ऐसा लगता है कि वही अडैप्टेशन सफल होते हैं जो मुराकामी की दुनिया के सिर्फ कॉपी करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसकी फीलिंग को, उसके सवानों को अपने मीडियम में दोबारा रचते हैं।
तो अगर हम आज की बात समेटें तो सार ये है कि मुराकामी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हुए अजीब, जादुई, रहस्यमयी कोनों को देखने का एक नजरिया देते हैं।
हाँ बिल्कुल, और वो हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि जिसे हम असलियत कहते हैं, रियलिटी कहते हैं, क्या वो वाकई उतनी ठोस और सीधी सादी है जितनी दिखती है, या फिर हमारी यादें, हमारे सपने, हमारे अंदर दबी हुई छाएं और डर, क्या ये सब भी उतने ही असली नहीं है? मुराकामी की दुनिया एक तरह का, कह लीजिए, जादुई आईना है।
हाँ,
जिसमें हम आज की जिंदगी के अकेलेपन, उसकी तलाश और उसके कभी ना सुलझने वाले रहस्यों को देख सकते हैं। शायद हम सबके जीवन में सतह के ठीक नीचे एक और कहानी चल रही है
जिसे सुनने या देखने की जरूरत है।
हाँ, बस उसे खोजने की देर है।
समापन पंक्ति। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।